हरे हरे रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे
श्री हर नाम संकीर्तन की जय।
जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदा यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा माधवा जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी जय श्री हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕೆಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮಃಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಷ್ಟಾಯ ಭೂತಲೇ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತಸ್ವಾಮೀನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೀ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶತಾರಿಣೇ. ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮಿನೇ ಗೌರತುಷೇ ನಮಃ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನವಂದೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮಸ್ತುತೆ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೆ ವೃಷಭಾನು ಸುತೇ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಗಾಯತಿ ಗಿರಿಂ ಯತ್ ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನತಾರಿಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ. ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಾಂ ವಚಾಮಿ ಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಜೀವಯತ್ಯ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸುಧಾಮ್ನ ಅನ್ಯಂಚ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾದಿನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ತಥಾಪಿ ಕೀರ್ತಯಾಮಿ ಅಂಗಂ ಯಥಾ ಮತಿ ಯಥಾ ಶ್ರುತಂ ಕೀರ್ತಿಂ ಹರೇರ್ ಸ್ವಾಂ ಸತ್ಕರ್ತುಂ ಗಿರಿಮನ್ಯದಾ ವಿದಾಸತಿಂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಯಹಾ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಭಿ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸ್ವಾಗತ ಹೇ. ತೋ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೇವತಿಪತಿ ಪ್ರಭು ಅವರ ಜೋ ಭಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಕೇಳಿ. ತೋ ಸಭಿಕೋ ನತಮಸ್ತಕ ಹೋಗರ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಪರಸೋ ಕಲ್ ಹೀ ಬತಾಯ ಥಾ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಕುಚ್ ತೋ ಜೋ ಭಿ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ. ತೋ ಯೇ ಅಭಿ ಸೀರೀಜ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೆ ಊಪರ್ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ ಕಾ. ತೋ ದೇವಕಿ ನಂದನ್ ಪ್ರಭು ಉನ್ಹೊನೆ ಚಾರ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆ ಊಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಕ್ಯಾ ಕಲ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನೆ. ತೋ ಪ್ರಭುಜಿ ಬೋಲೆ ಆಪ್ ಜೋ ಭಿ ಬೋಲ್ನಾ ಹೈ ಬೋಲ್ ಸಕತೆ ಹೈ. ಪಾಂಚ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೆ ಬಾದ ಪೂರಾ ಮೈದಾನ ಖಾಲಿ ಹೈ ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೆ. ತೋ ಮೈ ಥೋಡಾ ಸಾ ಬೋಲಾ ಠೀಕ್ ಹೈ ಅಭಿ ತೋ ಸಾತ್ವಾ ಕಾಲಿಯಾ ಲೀಲಾ ಕೆ ಊಪರ್ ಚರ್ಚಾ ಕರೆಂಗೆ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೊ ಲೀಲಾ ಹೈ ವೋ ಹೃದಯ ಕೋ ಶುದ್ಧ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಸಾರಾ ಉಸ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬತಾಯೆ ಗಯೆ ಹೈ. ತೋ ಕಹತೆ ಹೈ ತದೇವ ರಮ್ಯಂ ತದೇವ ರಮ್ಯಂ ರುಚಿರಂ ನವಂ ನವಂ ತದೇವ ಶಾಶ್ವತ್ ಮನಸೋ ಮೋಹಸ್ತವಂ ತದೇವ ಶೋಕಾರ್ಣವ ಶೋಷಣಂ ನೃಣಾಂ ಯದ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಯಶೋ ಅನುಗೀಯತೆ. ತೋ ಕಹತೆ ಹೈ ತದೇವ ರಮ್ಯಂ ರುಚಿರಂ ನವಂ ನವಂ. ತೋ ಕಹತೆ ಹೈ ಕೆ ಈ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೊ ಕಥಾ ಹೈ ವೋ ಹರ್ ಕ್ಷಣ ನಯಾ ನಯಾ ಆಸ್ವಾದನ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕರ್ತಿ ಹೈ ಸ್ವಾದು ಸ್ವಾದು ಪದೇ ಪದೇ. ತೋ ತದೇವ ರಮ್ಯಂ ರುಚಿರಂ ನವಂ ನವಂ ತದೇವ ಶಾಶ್ವತ್ ಮನಸ್ಸೋ ಮಹೋತ್ಸವಂ. ತೋ ಮನ್ ಕೆ ಲಿ ಹಮೇಶ ಕ್ಯಾ ಹೈ ಮಹೋತ್ಸವ ಹೈ ಮಹೋತ್ಸವ ಹೈ तो इसलिए वहां पे कहते हैं निवृत्त तर्शेर रूप ये माना भवौषधि श्रोत्रो तो मनोभिरामक। तो वहां पे तीन प्रकार के लोगों के लिए ये कथा रुचिकर होती है या आनंददायक होती है। पहले है मुक्त, दूसरे है मुमुक्षु और तीसरे है विषयी। तीनों के लिए भी ये भगवान की कथा रुचिकर हो सकती है या रुचिकर है। तो मुक्तों के लिए रस के अनुसार, मुमुक्षु के लिए औषधि है और विषयों के लिए मनोभि राम। तो मन का स्वभाव है जिस चीज को वो पकड़ लेता है और उसके ऊपर अगर केंद्रित हो जाते हैं तो उसको विस्तार करता है। तो पांच चीजें बताई गई है जिससे विस्तार होता है। जले तैलम खले गुह्यम पात्रे दानम मनागपि शास्त्रे ज्ञानम स्वयं एव विस्तारतः वस्तु शक्तितः। तो जल में तेल का विस्तार हो जाता है, जल में अगर तेल डाला जाए तो उसका विस्तार होता है। खले गुह्यम, खलनायक को कभी गुह्य बताना नहीं चाहिए। खलनायक मतलब जो दुष्ट है उसको कभी सीक्रेट नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो फैलेगा बिना इंटरनेट के फैलेगा। तो खले गुह्यम पात्रे दानम, अगर किसी पात्र व्यक्ति को दान दिया जाए तो उस दान का विस्तार होता है, लाभ होता है, कल्याण होता है, फायदा होता है। और शास्त्रीय ज्ञानम, और शास्त्र का ज्ञान भी पात्र को ही देना चाहिए, उससे वो विस्तार करता है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को ही विशेष शिक्षाएं प्रदान की। तो और उसी प्रकार मन में छोटा सा भी अनर्थ, छोटा सा भी पाप और उसके ऊपर अगर ध्यान हो जाए तो बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है। इसलिए भगवान की कथा ये मन को पूरी तरह से शुद्ध करने वाली है। तो अगर थोड़ा भी अगर कोई कथा सुनता है भगवान का और उसके ऊपर अगर ध्यान करता है तो उसका विस्तार हो जाता है। तो इसलिए विषय लोग भी अगर थोड़ा सा भी विचार करे या सुने तो भी उसके लिए लाभ है। मनोभिरामक, तो वहां पे बताया गया है तदेव रम्यम रुचिरम नवनवम तदेव शाश्वत मनसो महोत्सवम तदेव शोकारणव नूरणाम। तो ये भगवान की कथा जो कलयुग के लोगों जो बहुत ही शोक में डूबे हैं, शोक मतलब लैमेंटेशन, वो ओशन ऑफ लैमेंटेशन, समुद्र है शोक का। तो भगवान की कथा उस शोक को भी सुखाने वाली है। तो दो जगह पे ऐसा आता है, हासम हरेर वनताखिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर शोषणम अत्य धारम सम्मोहनाय रचितम निजमायस्य भ्रूमंडले मनुकृते मकर ध्वजस्य। तो वहां पे बताया एक स्माइल भगवान की सफिशिएंट है पूरे संसार के शोक के सागर को सुखाने के लिए। हा संहरे रवनता खिल लोक तीव्र शोकाश्रु सागर, वहां पे बताया गया है तप्तस्य मतलब है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज वहां पे क्या पूछते हैं, यक्ष उनको पूछते हैं कि संसार की क्या स्थिति है, कैसा है संसार। तो कहते हैं कि वो एक कढ़ाई है, कढ़ाई और उसमें तेल उबल रहा है और सारी जीवों को उसमें पकोड़े के जैसे फ्राई किया जा रहा है। तापत्रयना बिहतस्य घोरे संतप्य मानस्य भवाधुनीशः पश्यामि नान्यम त्वच पश्यामि नान्यम त्वदंग्री पश्यामि नान्यम त्वदंग्री विके तो दंग्री हा अमृताभिवर्षेत द्वंद्वात पत्रात अमृताभिवर्षेत। तो तापत्रेना भी हतस्य गोरे संतप्य मानस्य भवाधुनिशः पश्यामि नान्यम त्वदंग्री। इधर थोड़ा सा प्रॉब्लम त्वदंग्री तो पश्यामि नान्यम त्वदंग्री जो भी है। उसके बाद आता है पीयूष वर्ष, सीता आप्त पत्रे पीयूष वर्ष। तो कहते हैं कि बाहर से ताप और अंदर से संताप, बाहर से ताप और अंतर से संताप, बाहरुन ताप ले ले आतुन संताप ले ले है क्या नहीं? आपका अगर झगड़ा करने तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी लोग बहुत त्रस्त है, बस उस उनको देखने से भी झगड़ा हो जाता है बाहर के लोग बाहर के तो संताप पे माना भवे धुनिशः तो तापत्रयेना भी हतस्य गौरे। तो बताया जाता है कि वो जो कड़े हैं उसमें सब लोग कैसे एक पकोड़े के जैसे उबल रहे हैं, तो वो ये जो शुभविलास प्रभु को बता रहे थे कि गुलाब जामुन बनाते हैं ना तो उसको कड़े में पहले फ्राई करते हैं, तो लाल होने तक तो ठीक है, एक दूसरा आइटम होता है काला जामुन, तो कलयुग के काला हो गए तो उसके बाद उसको उठा के उसमें डालते हैं, किसमें? सिरप में, जो शुगर का जो जूस है उसमें डालते हैं, तो वो पूरी तरह से जूसमय हो जाते। तो बोलते इसी तरह से जब कलयुग के लोग इस संसार के उस उबलते हुए तेल से उबल उबल कर जब आते हैं और कृष्ण लीला सुनते हैं, तो वो कैसा है? वो सिरप में डालने के कैसे ना, इति दृक् स्वलीला भीरानंद कुंडे सोघोषम निमज्जंतम, मतलब किधर से भी दबाओ पाक ही पाक निकलेगा। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दैट गुलाब जामुन गेट कंप्लीटली है ना ड्रेंच्ड विथ शुगर सिरप। तो निमज्जंतम आपके कृष्ण भगवान की लीला है। तो उस उबले हुए तेल से निकलकर जब वो गुलाब जामुन उस सिरप में गिरता है तो वो पूरा स्वीट हो जाता है। तो उसी तरह भगवान की जो लीला है वो कैसे? रुचिरम नवम नवम शोकार्णव शोषणम नूरनाम यद उत्तम श्लोक अनुगीयते। तो लेकिन ये किसके लिए है? जो पशुघनाथ है उनके लिए, जो आत्मघाती है और जो पशुघाती है उन लोगों के लिए ये कथा नहीं। मतलब होगा क्या लाभ उनको? होगा होगा आत्मघाती या पशुघाती? हाँ, तो बोले अभी एक मुझे भी पता नहीं है होगा क्या नहीं होगा। होगा नहीं, होना ही चाहिए लेकिन बहुत देर से होगा तो किसी भी जीव को भगवान की कथा पवित्र करने वाली है। और भक्ति के जो नौ स्टेप्स है, मतलब जो पहला है श्रवणम अंग, उसमें है कीर्तनम। तुकाराम महाराज बहुत सुंदर एक शब्द बताते हैं, वो कहते हैं कि फल आहे मुळापाशी, फल आहे मुळापाशी। तो इसका अर्थ है जो फल है वो रूट में है, रूट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? जड़ में है। तो कैसे? तो वो कहते हैं केवल जड़ का अगर हम केयर करें या जड़ की ही देखभाल करें तो फल अपने आप आ जाएगा। तो बेसिक में पक्का हो गए तो फ्रूट मिलेगा। तो केवल जड़ की ही देखभाल करनी है और कुछ करना नहीं। जड़ की अगर बहुत अच्छी सी सुरक्षा की, पोषण किया तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वो जो बीज है उसको सिंचन किससे करना है? वो श्लोक श्रवण। हाँ, तो ये बहुत बहुत ऐसे लाभदायक है भगवान की कथा, कितने सारे मतलब शोकों को हरण करने वाली है बहुत। तो इस तरह से ये भगवान की कथा है। अभी इसमें बहुत सारा विस्तार नहीं करेंगे, तो आज हम भगवान की कालियादमन लीला को श्रवण करेंगे। तो भगवान वहां पे बताते हैं 12वें 13वें अध्याय में कि मुझे कौन से भक्त प्रिय हैं। तो उसमें एक एक पहला ही शब्द बोलते, कौन सा? वो अद्वेष्टा सर्वभूताना, मैत्रे करुणे ये वचह क्या निर्मोह निराहंकार। उसमें पहला ही बोला है अद्वेष्टा, क्या द्वेष नहीं होना चाहिए। तो जब द्वेष होता है तो स्पर्धा का भाव आता है, और जब स्पर्धा का भाव आता है तो दूसरा है निंदा होती है। द्वेष के कारण स्पर्धा, फिर निंदा, और उसके बाद फिर बोलते पॉलिटिक्स, राजनीति होती है, और लास्ट में हिंसा। ये चारों काम नहीं करे तो हिंसा। तो इस तरह से द्वेष को, द्वेष ही जड़ है इस संसार में हमारे आने का। इच्छा द्वेष समुत्ते न द्वंद्व मोह, और ये जो कालिया है ये केवल द्वेष का ही प्रतीक है। तो इस लीला को सुनने में हम जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौर निताय की। तो इस कालिया लीला की शुरुआत में बताया जाता है कि परीक्षित महाराज का प्रश्न है कि कालिया जो रमणक द्वीप है उसको छोड़कर यमुना में क्यों आया, इतना सुंदर स्थान छोड़कर रमणक। अभी वो कहाँ है वो पता नहीं है, लेकिन है वो ऐसा रमण कालिया नागालय, तो बहुत सुंदर स्थान है, उसको छोड़कर यमुना में क्यों आए। दूसरा, ये जमीन का प्राणी है, स्थलचर है, वो जलचर कैसे बन गया, वो जलचर में मतलब पानी में क्यों रहने गया। और तीसरा है कि गरुड़ से उनको क्या डर था, तो ये प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। तो शुरुआत होती है कथा की, तो उसके पहले बताया जाता है कि ये जो कालिया है ये कहां से उत्पन्न हुआ। तो नारद जी विदेहराज बहुलाश्व को पूछते हैं, बताते हैं कि पूर्व काल की बात है कि स्वयंभू मनु काल में वेदशिरा नाम के एक बहुत उच्च कोटि के मुनि थे। वो विंध्याचल पर्वत के ऊपर तप कर रहे थे, और वो भृगु वंश के थे। वेद शिरा घनघोर तपस्या कर रहे थे स्वयंभू मनु के काल में, और विंध्याचल पर्वत पर भृगुवंशी थे, तप कर रहे थे। तो उसी समय वहां पे एक और ऋषि आए जिनका नाम था अश्वशीरा, वेदशीरा अश्वशीरा। तो वो जो आए वहां पे, तो अश्वशीरा आने के बाद उनकी भी इच्छा थी वहां पे तप करने की। तो जैसे ये वेदशीरा ने उनको देखा तो उनके आंख क्रोध से लाल हो गई, नेत्र क्रोध से लाल हो गए, और इतना गुस्सा और इतना क्रोध, और वो बोले, वेदशीरा बोले, आप यहां पे तप मत करो, ये ऑलरेडी रिजर्व है, यहां पे आप तप मत करो, आपके लिए यहां पे तप करना सुखद नहीं होगा। और बोलते हैं कि दुनिया में बहुत सारे स्थान है जहां पे आप तप कर सकते हो, जाओ उधर। तो इस तरह से बोलने के बाद अश्वशीरा को भी क्रोध आ गया, उन्होंने क्रोध में उनकी भी आंखें लाल हो गई। तो जैसे आंख लाल हो गई तो बोले, ये सारी भूमि तुम्हारे बाप की नहीं है। इट इज नॉट बिलोंग टू योर बाप, सारी भूमि माँ भगवान विष्णु के, सब भगवान की भूमि है, तुम कहां से आ गए, यहां पे तप नहीं करना है ना। तो ये संसार का स्वभाव है, टू बी अटैच, मतलब जो चीज हो उससे अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। अभी वो भी तप करके ही जाने वाला है, वो कहां वहां रहने वाला है, सबको जाना है, लेकिन फिर भी वो क्या हो गया, और वो आसक्ति के कारण उसको लगा ये आप पे आएगा तब करेगा, ये फेमस हो जाएगा, मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे कुछ तो मन में आ गया, तो बहुत गुस्सा हो गया। वेदशीरा उन्होंने बोला जाओ, तो आसक्त हो जाता है व्यक्ति, जहां पे उसको सेटअप हो जाता है वहां पे आसक्त हो जाता है। एक राजा छद्म वेश कर रात को घूमते ना, देखने के लिए राज्य में सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं, तो छद्म वेश लेकर घूम रहे थे, तो घूमते वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां पे एक व्यक्ति को देखा उन्होंने, फटे हुए कपड़े थे और पूरे अस्त व्यस्त बाल थे, भिखारी था ये, लेकिन वो रात के आधी रात को भी ऐसा ऐसा देख रहा था। तो राजा ने उसके पास जाके पूछा कि सोए नहीं क्या अभी तक? बोले नहीं अभी तक नींद नहीं आ रहा है। क्यों? डर लग रहा है। क्यों? बोले ये जो मेरा जो पात्र है ना भीख मांगने का, वो कोई चुरा के लेके जाएगा, इसीलिए मुझे डर लग रहा है। वो टिन का डब्बा था, तो बोला ये चुरा के लेके जाएगा कोई, तो इसीलिए मुझे नींद नहीं आ रहा है। राजा बोला धन्य है तू, मेरे राज्य में है तू। तो मतलब वो बता रहे थे कि वो बेकरी और टीन से भी क्या हो गया। तो ये वेदशीरा इतना महान तप कर रहा था, मुनि था, भृगु ऋषि वंश का था, स्वयं भू मनु के समय भी उधर भी क्या कर रहा है वो, तुम्हारे लिए और कोई जगह नहीं है, तुम वहां जाओ तप कर। इनको बहुत गुस्सा आ गया, बोले तुम ये सारी भूमि विष्णु की है, ये तुम्हारे पिताश्री की नहीं है। तो उन्होंने भी शाप दे दिया उनको। हा तो उन्होंने शाप दिया, तुमने आज तक किसी भी मुनि को यहां पे तप नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्वभाव के कारण भटक नहीं देते हो तुम इसको, और जैसे ही कोई आता है तो फुफकार करते हो एक सर्प के जैसे, जो ऐसा आप भी किया आपने, तो इसलिए आप क्या बन जाओ, सर्प बन जाओ, स्नेक बन जाओ, सर्प बन जाओ, हमेशा फुफकार करते हो, और आपको हमेशा गरुड़ का भय रहेगा, नित्य गरुड़ का भय रहेगा। तो इस तरह से वेदशीरा को भी बहुत गुस्सा आया, वो भी बोला कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो बहुत ही दूषित है, आपका भाव बड़ा दूषित है। और वो कहते हैं क्यों दूषित है, क्योंकि आप छोटे से अपराध के लिए भी बहुत बड़ा दंड दे रहे हो। छोटा सा अपराध किया मैंने, बोला आप जाओ यहां से, तो इसमें क्या हुआ है कि नहीं? ये छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड दे रहे हो, और अपना काम बनाने के लिए कौवे के जैसे फिर घूमते रहते हो, तो इसलिए मैं आपको शाप देता हूं, आप भी कौवा बन जाओ। तो ये शाप और ये कौवा बन, इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हो और अभी देखो फ्यूचर क्या है उनका। जस्ट इमेजिन यू नो, मतलब गुरु ने कुछ नहीं किया, भगवान ने कुछ नहीं किया, इनका ही राडा चल रहा है। और हम बोल रहे व्हाई प्रोसेस इज नॉट वर्किंग, व्हाई प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा सॉफ्टवेयर ही गलत है। वायरस भरा हुआ है, उसी वायरस को निकलने के लिए भगवान एंटीवायरस के रूप में आते हैं। मतलब कोई किसी के बीच में नहीं आ रहा है, हम लोग यहां कितना मतलब इतना तपस्या कर रहे हैं और क्या फ्यूचर बना दिया। इसलिए कलयुग में शाप देने की शक्ति भगवान ने निकाल ली। माय गॉड, नहीं तो पूरी धरती जलकर राख हो जाती थी। है ना, चाइना वाले बोलते भारत जलकर भस्म हो जाए। भारत वाले तो पाकिस्तान जलकर भस्म हो जाए, वो देश की तो अलग बात है, घर में ही सब जलकर राख हो जाते हैं। मतलब हालांकि ये तपस्या कर रहे थे लेकिन उसके इफेक्ट नहीं हो रहा था क्या? मतलब बस उनको देखकर क्यों गुस्सा आ गया? सोचने की बात है, मतलब इतना ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे, तो उनको देखकर ही गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और दोनों ने अपना भविष्य काला कर दिया। और एकलयुग के नहीं थे वो उस समय, स्वयंभू मनु, इसलिए उनका शाप विल वर्क, वो हो गया ही होगा। तो उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए उनके सामने। जाऊंगा मैं खाने लीला में जो माय गॉड, तो वहां पे भगवान प्रकट हो गए और उनके सामने प्रकट होकर वो बोले, देखो भन्न करो ना का झगड़ा झगड़ा मत करो, ये दोनों भुजाएं समान होती है। तो भगवान कितना सुंदर बोले, बोलते दोनों भुजाएं मेरे लिए समान है, उसी प्रकार आप दोनों भक्त मेरे लिए समान है। समोहम सर्वभूतेषु, ये दोनों भुजाएं मेरे लिए समान है, उसी प्रकार से आप दोनों भक्त मेरे लिए समान है। मैं मेरे वचन को तोड़ सकता हूं, मैं मेरी बातों को झुटला सकता हूं, लेकिन आपने जो बोला है वो सच होकर रहेगा। अगर मेरे पास केस होता तो मैं दबा देता, कुछ तो कर देता, उसका हैंडल कर। नमाम करवाणी लिंब नहीं कर्म बने सुप्र। ये आप लोगों का राड़ा है, ये होगा। फिर हम बोलते भगवान क्यों बीच में नहीं आ रहे हैं, भगवान नहीं आएंगे बीच में, क्योंकि दोनों भुजाएं मेरी है, इसके साइड ले तो ये बोमा मारेगा, इसे साइड से लेंगे थियो। भी हिरण्यकश्यप बोलता है भगवान पक्षपात कर दे, न्यायो ही दंड, क्या दंडो ही न्यायो, आगे आएगा। नागपत्नी बोलती है आपने सही किया भगवान, कैसे बोलते है? क्योंकि पुत्र के लिए पिता का जो दंड होता है वो अनुग्रह ही होता है। तो भगवान बोलते भुजाएं जैसे वैसे ही तुम दोनों हो, मेरे वचन मैं झुटला सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, लेकिन भक्तों के नहीं। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, चिंता मत करो, तुमको नाग बनना ही पड़ेगा, आपको सर्प बनना पड़ेगा। लेकिन जब आप सर्प बनोगे आपको गरुड़ से भय रहेगा, लेकिन मैं आकर आपके सिर पर मेरे चरण चिन्हों को रखूंगा, और जिसके द्वारा आपका गरुड़ का भय निकल जाएगा। और इनको बोलते हैं अश्वशिरा को, आप कौवा बनोगे लेकिन महाज्ञानी कौवा बनोगे, वो काकभूषण भी बने। हाँ, जिन्होंने गरुड़ जी को दिव्य ज्ञान दिया, रामायण सुनाया, जो काकभूषण भी फेमस है कथा के लिए भगवान, वेदों का ज्ञान होगा, त्रिकालदर्शी होगे, और आने वाले सारे पीढ़ी आपका वंदन करेंगे, तो बने कौवा। भगवान ने वरदान देने, तो ये है भगवान के इतना भयानक, उनका काल ब्लैक कर दिया तो उसको भी अभी व्हाइट कर दिया। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए, अगर भगवान अगर नहीं आते तो उनका क्या हो जाता था? मतलब भगवान जो भी करते हैं वो फ्यूचर ब्राइटी करते हैं। तो इसलिए यहां पे इस तरह से बोलने के बाद, मेरे चरण आपके सर पर अंकित हो गया और गरुड़ का आपको भय नहीं रहेगा, और आप कौवा बनोगे लेकिन आत्मज्ञानी बनोगे, योग सभी सिद्धियां आपको प्राप्त होगी, त्रिकालदर्शी हो गए आप। और इस तरह से बोलकर भगवान वहां से चले जाते हैं। तो ये है कालिया का बैकग्राउंड, ये कहां से प्रकट हुआ। और फिर कथा आती है कि कश्यप मुनि के दो पत्नियां थी, कद्रु और विनीता। विनीता से प्रकट हुए गरुड़ जी और वरुण, अरुण, और कदुरका के सहस्त्र भुजंग सर्प ही उत्पन्न हुए और उसमें से सबसे खल जो था वो ये खल कौन खालिया। तो ये जो कालिया की जो लीला है उसमें बताया जाता है कि ये धेनु का सुर वध के बाद ये कथा आती है। तो मैं सुन रहा था कि धेनु का सुर का वध पहले हुआ और कालिया दमन बाद में, ऐसा वर्णन भागवत में आता है। लेकिन पहले धेनु का सुर का वध हुआ, पहले कालिया दमन हुआ फिर धेनु का सुर का वध हुआ, तो ऐसा क्यों बोल रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी को बहुत पीड़ा हो रही थी ये कालिया दमन की लीला बताने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत दुख पाया ब्रजवासियों ने, और इसलिए फिर उन्होंने पहले धेनु का सुर वध किया फिर कालिया लीला बताई। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ, गायों के साथ विचरण करते 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 घूमते घूमते पूरे वृंदावन के जो जंगल है उसका आनंद लूटते लूटते, बहुत विस्तार से वर्णन है वो कि क्या क्या वो खेल खेल रहे थे, क्या क्या लीला कर रहे थे। सब खेलते 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 ग्रीष्म ऋतु आया था उस समय, और खेलते खेलते वो यमुना के तट पर आकर उनको सबको प्यास लग गई थी, गए बहुत प्यासी हो गई थी और ग्वाल बाल भी उनको बहुत प्यास लग गई थी। और वहां पे शब्द आता है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कुरु कह के पुकारते, हे कुरु। तो वो कुरु क्यों बोलते हैं उसको, वो कहते हैं कि आप जानते हो प्यास की क्या व्यथा होती है ना, आपने जो अनुभव किया है ना। एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगणाम वने, मृगान अनुगता क्षांता तृष्ट शुभम जल आशेन चक्षेन प्रविवेश तम आश्रमम ददर्श मुनिम आसनम शांतम मिलित लोचनम। आप एक बार उठकर धनुष लेकर उठाकर एकदा धनुरुद्यम्य विचरन मृगणाम वने, मृग का पीछा करते करते क्षुधित तृषित भृशाम, आप थक गए प्यास लग गई भूख लग गई, और फिर जलाशेन अचक्षेन जल का खोज करते करते तम प्रविशम आश्रमम, आपने एक आश्रम में प्रवेश किया जहां पे मुनिम शांतम मिलित लोचनम, जहां पे मुनि शांत बैठकर आंखें बंद कर ध्यान कर रहे थे। तो वो प्यास की तड़प आप समझते हो ना, इसलिए कुरु वो गैया और वो बछड़े को इंतजार नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत वहां का पानी पी लिया, और जैसे वो पानी पी लिया वो अचेतन हो गए, मर गए वहां पे। और जब भगवान ने अचक्षेन जब देखा तो भगवान को बहुत दुख हुआ, क्योंकि भगवान उनसे बहुत प्रेम करते थे, बछड़ों के प्रति, गाय के प्रति, हरेक गाय का नाम लेकर पुकारते थे भगवान, हरेक बछड़े को नाम लेकर पुकारते थे, ग्वाल बालों के प्रति भगवान का कितना प्रेम है। तो इस तरह से जब भगवान ने देखा तो तुरंत अपनी अमृत भरी दृष्टि से उनके ऊपर दृष्टिपात किया, और जैसे दृष्टिपात किया सब उठकर खड़े हो गए, और जैसे उठकर खड़े हो गए सब भगवान का नाम लेने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बहुत आनंद से उठ गए। उनको लगा नींद लग गई थी, उठ गए हम, और एक दूसरे को देखा, तू मर गया था ना पहले, तू मरा था पहले, तो एक दूसरे को देख रहे, आश्चर्य से देख रहे, विस्मित होकर एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन उन्होंने ये जान लिया कि ये किसकी कृपा थी, गोविंद कृपा। तो तुरंत उन्होंने बोले, भगवान गोविंद की कृपा से हम फिर से जिंदा हो गए। तो अगर किसी को अपयश मिल गया तो बोल सकता है चलो भगवान की इच्छा थी, लेकिन यश मिल गया तो क्रेडिट भगवान को देना बहुत कठिन हो जाता। अगर फेल हो गया तो चलो इट भगवान का अरेंजमेंट था, प्रयास किया मैंने लेकिन भगवान का अरेंजमेंट था। लेकिन यश मिलने के बाद भगवान को क्रेडिट देना ये थोड़ा टफ होता है। लेकिन ये जो ग्वाल बाल है ये तुरंत समझ गए ये किसका अनुग्रह है, गोविंद की कृपा है। तो एक बार एक व्यक्ति ऐसे जा रहा था तो उसने एक बड़ा नारियल का पेड़ देखा और देखते ही उस पे बहुत सारे नारे लगे थे, तो वो इतना खुश हो गया, इतना प्रसन्न हो गया और तुरंत चढ़ गया ऊपर और बहुत सारे नारियल उसने तोड़े। और जब वो नीचे उतरने लगा थोड़ा सा, तो उसने नीचे देखा तो इतना गहरा वो नीचे, तो वहां पे वो डरने लगा क्योंकि वो लालच में चढ़ गया था, उसको पता नहीं था वो कितना ऊपर जा रहा है। लेकिन ऊपर जाने के बाद पता चल गया कि वो कितना ऊपर आया है, तो वहां पे वो क्या बोल रहे थर थर कांपने लगा वो। और तभी तूफान आ गया जोर का, बहुत जोर का, अभी नारियल का पेड़ बहुत जोर से हिलने लगा, तो वो नारियल लेके हिलने लगा वो, तो उसने भगवान को प्रार्थना किया, भगवान प्लीज रक्षा करो, बचाओ भगवान, मैं सारे 100 नारियल आपको ही चढ़ाऊंगा। तो शांत हो गया, तो जैसे शांत हो गया तो थोड़ा सा नीचे आया, और थोड़ा नीचे आने के बाद उसके मन में भावना आ गई कि ठीक है अभी शांत हो गया, तो तुरंत वो बोला ठीक है अभी इतना 100 नारियल लेके भगवान क्या करेंगे, ठीक है 25 दे देता हूँ, सॉरी 25 में ये रख लेता हूँ, 50-50 करेंगे, है ना, इतने भी 100 नारियल क्या करेंगे ना, 50-50 आधे 50 उनको 50 उनको। तो और नीचे आया आधे तक, वहां पे आने के बाद बोला यार मैं ही चढ़ा ऊपर, इतना सारे मैं ही निकाला, और ये ही वॉज जस्ट स्लीपिंग पार्टनर, तो क्यों देना है उनको, नहीं तो बोला ठीक है मैं 25 दूंगा, 75 मुझे रखूंगा। और थोड़ा नीचे आ गया तो बोले इतना भी देने की जरूरत नहीं है, भगवान क्या मांगता है, पत्रम पुष्पम एक भी दिया तो ठीक है ना। जैसे ऐसा बोला इतना जोर से तूफान आने लगा, बहुत भयानक तूफान आने लगा, तो बोला भगवान मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। भगवान आप समझते नहीं, आया वो जोकिंग यू नो, मैं पूरे 100 आपको ही देने वाला था, मैं बस चेक कर रहा था नहीं क्या। तो गोविंद की कृपा, मतलब फेल हो गए तो ठीक है, लेकिन यश मिलने के बाद भगवान को क्रेडिट देना यहाँ पे। तो जो ग्वाल बाल है उन्होंने तुरंत बोले ये गोविंद की ही कृपा है, भगवान की कृपा है। तो इस तरह से जैसे उड़ गए तो भगवान ने देखा ये जो कालिया हृदय है, तो ये जो कालिया हृदय है वो यमुना में नहीं था, यमुना के साइड में था। और प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिखते हैं कि वो साइड में था, इसका प्रमाण ये है कि अगर वो कालिया यमुना में होता तो पानी मथुरा में भी जाता था, तो वहां पे सब विषाक्त तो हो जाता, सब मर जाते, इट वॉज नॉट कंप्लीटली पॉइजनस, पूरा रिवर ही विषाक्त तो नहीं हुआ था, लेकिन वो जो साइड में वो यमुना का पानी बह के जाता था वहां पे बहुत बड़ा सरोवर बन गया था, और हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कितना बड़ा था वो, बहुत बड़ा था, विशाल था। तो अभी यहां पे बहुत ही सुंदर श्लोक में आता है कि विभु कृष्ण, तो विभु कृष्ण बोला गया है, विभु मतलब भगवान श्री कृष्ण जो महान है, विभु कृष्ण। तो सुखदेव गोस्वामी इतना सुंदर वो श्लोक लिखते हैं, विभु कृष्ण भगवान श्री कृष्ण कृष्ण अहिना, तो कृष्ण ने कृष्ण अहिना का अर्थ होता है जो काल सर्प है कालिया के द्वारा कृष्णा दूषिताम, है ना, कृष्ण विभु कृष्ण, फिर बोलते हैं कृष्ण अहिना कृष्णा दूषिताम, वो पोएटिक श्लोक है वो। तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण ने उस कालिया कृष्ण मतलब काला, वो काला कालिया के द्वारा कृष्णा मतलब यमुना को दूषितम विलोक्या देखकर, विलोक्या देखा, विलोक्या देखकर उस उन्होंने विचार किया, क्या 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 विचार किया, क्या भी इसको शुद्ध करना है, तस्य विशुद्धिम उसकी शुद्धि करने की अन्विच्छन इच्छा किया, उसकी शुद्धि करने की अन्विच्छन मन में इच्छा की, इच्छा करके तम सर्पम उदावासयतः, और उसको शुद्ध करकर उस सर्प को वहां से भगाना है, वहां से निकाल देना है, ऐसी भगवान ने अन्विच्छन इच्छा की। तो क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि जो यमुना है वो भगवान की कालिंदी नाम की पट रानी है, और दूसरा वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि जो ब्रजवासी है या जो गोप है या जो गाया है उनके लिए पानी पूरी तरह से शुद्ध करना है और ये पूरा वातावरण शुद्ध करना है। तो परम पूज्य महाराज बोल रहे थे कृष्ण वाज बेस्ट एनवायरमेंट, क्या एनवायरमेंट बोले तो भगवान पता नहीं पर्यावरण को शुद्ध करने वाले भगवान है, तो उन्होंने सोचा पर्यावरण शुद्ध करना चाहिए, तो यमुना का प्रकल्प तभी से भगवान ने हाथ में लिया था। यमुना तो एक भक्त बता रहे थे कि अभी वो काल्या का विष से विषाक्त वो यमुना, अभी आजकल लोग पूरे केमिकल उसमें छोड़कर उसको विषाक्त कर दिया है। तो एक वीडियो भी आया था कि पूरा केमिकल आकर वो नदियां पूरी काली काली हो गई है और उसके आजू बाजू बहुत कचरा पड़ा है और सारा गाय भी मरी है वो पानी पीकर। बता रहे थे कि वो फैक्ट्री आज की कालियां है, कलयुग के कालियां ये फैक्ट्रियां है। तो वो विषाक्त था, तो भगवान ने सोचा अभी इसको शुद्ध करना है, पवित्र करना है, निर्मल करना है। लेकिन इसके पहले बताया जाता है कि बलराम जी वहां उनके साथ नहीं गए थे, बलराम जी उनके साथ नहीं गए थे क्योंकि पहला कारण है उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, उनका वार दिवस था, और दूसरा कारण है कि अगर बलराम जी उनके साथ होते तो बलराम जी कृष्ण को यमुना में कूदने ही नहीं देते, इसलिए भगवान ने उनको योग निद्रा में सुला के आए थे, बलराम जी को योग निद्रा में सुला के आए थे। तो पहले उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप यमुना के और विशेष करके इस कालिया रथ के आसपास भी भटकना नहीं, और बलराम जी अगर उनके साथ होते तो बलराम जी स्पेसिफिकली विशेष करके कृष्ण की रक्षा के लिए उनके साथ उनको भेजा जाता था, ऊंचे पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, किसी यमुना के किनारे नहीं जाना है, किसी हिंसक प्राणी के पास नहीं जाना है, तो ये सब बलराम जी देखभाल करते थे। तो वहां पे वो कहते हैं कि बलराम जी को नहीं आने दिया। और दूसरी बात है, तीसरी बात बताते हैं कि अगर बलराम जी वहां पे आते और गोप बालक गोपिया यशोदा आनंद बाबा ब्रजवासी जब आते और वो देखते कृष्ण को इस अवस्था में, तो वो तुरंत उस डोह में कूद जाते, तो उनको सांत्वना देने के लिए उनको रोकने के लिए कोई नहीं होगा, इसीलिए बलराम जी को वहां पे रखा गया। और तीस चौथा बोलते हैं कि अगर बलराम जी आते तो बलराम जी का एक सॉफ्ट कॉर्नर है सर्पों के लिए क्योंकि उनके ही वो वंशज है, क्योंकि कद्रु के फर्स्ट पुत्र है शेष, तो इसलिए उनके लिए भी उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। तो मैं अभी इसको बहुत मारने वाला हूं, कुत्ते के जैसे मारूंगा इसको मैं, नहीं वो मतलब बहुत मारा है, इतना मारा है, रुग्ण बोला गया उसको, रुग्ण शब्द आया है, रुग्ण रुग्ण हो गया था वो, फाड़ दिया उसके पूरा हुड, उसके जो फण ये है ना चमड़ा सब निकाल दिया था, बहुत मारा है उसको, देखो आप कुत्ते के जैसे मारा मतलब प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में लिखते हैं कि जो घमंडी लोग हैं वो भगवान को शरण में आते तो भगवान फिर इस तरह से उनको शरण में लाते तो इसलिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, और इस काले को मैं मारूंगा तब वो देख नहीं पाएंगे, और अगर वो शरण में चला गया बलराम जी के तो उनको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये पूरा प्लानिंग था भगवान का। तो वहां पे आके अन्विच्छन भगवान ने इच्छा किया, अभी इसको अभी भगवान बोले आता माजी सटक ली, मतलब क्या बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, मेरे मेरे गैये को, मेरे बछड़े को और मेरे मित्रों को मारा, टू मच, बहुत गुस्सा आ गया भगवान को। तो अनविच्छन आघादे, आघादे शब्द आया, अतः मतलब बहुत गहरा, अंत जले, जल के भीतर से भगवान कथम, भगवान ने कैसे। तो ये परीक्षित महाराज अभी प्रश्न पूछ रहे, अभी ये आगे जो एक श्लोक होगा ना पहला, उस श्लोक में पर सुखदेव गोस्वामी ने कथा खत्म कर दी। क्या भगवान ने यमुना को शुद्ध किया और कालियों को भगा दिया, बस हो गई कथा, महाप्रसाद है गोविंद। परीक्षित महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बोले नहीं बताओ, अघादे, उस आघात गहरे, अंत जले, जल के भीतर से भगवान, भगवान कथम, भगवान ने कैसे अही न्याग्रहणात सर्प का दमन किया, कैसे दमन किया उस आघात जल में जाने के बाद, उस सर्प का दमन कैसे किया। वही सह निश्चय वह बहु युगे यथा, निश्चय निश्चय ही वह बहु युगे, बहुत युगों से वहां रह रहा था वो कालिया, बहुत युगों से वहां रह रहा था। तो बहुत समय से तो जलचर ना होते हुए भी वो वहां कैसे रह रहा था, आवासम, कैसे उसने अपना आवास, अपना ग्रह, अपना नगरी बिठाया था, कैसे वो रहा वहां पे रह रहा था। विप्रकथ्याताम, हे ब्राह्मण कृपया करके बताओ, ये सारा विस्तार से बताओ, शॉर्ट में मत बताइए, विस्तार से बताइए। आई वॉन्ट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूं विस्तार से, क्यों क्यों ये इतने आघात जल में प्रवेश करके उसको बाहर निकाला, सर्प का दमन किया, कैसे दमन किया। तो सुखदेव गोस्वामी फिर कहते हैं, कालिंद्या, यमुना में कालियस्य, कालिया नाग के विष अग्निना। तो अभी वो उस रद का वर्णन कर रहे, कौन, सुखदेव गोस्वामी, वो कैसा था रद, वो कालिया रद कैसा था। तो कहते हैं, कालिंद्या, यमुना में कालियस्य, कालिया नाग के विष से अग्नि ना, उसके विष से अग्नि निकलती थी, इतना भयानक उसका विष था। तो केवल विष नहीं था, विष के लपटे, ज्वालाएं निकलती थी श्रप्य मानायाम, और वो उस अग्नि के कारण वो पानी खोलता था, उबलता था, इतना भयानक था, खोलते हुए जल वाला वो कच्चित रद आसित, एक ऐसा रद था, एक ऐसा ये था, सरोवर था, कोई कुंड था, उपारिगा उसके पास। वो कहते हैं कि वो इतना भयानक विषाक्त उबले, उसके लपटे आती थी, आग्नि आता था, उसके कारण उपारिगा, उसके ऊपर से उड़ने वाले पक्षी खगा यस्मिन पतंती, जब खगा यस्मिन पतंती उराग, जब पक्षी ऊपर से उड़ते जाते थे तो उस विष के कारण अग्नि निकल रही थी, और उसके बाष्प से, उसके बाष्प मतलब वो हा, तो उसके कारण आकाश में बादल जैसे बन गया था विष, वो उसके बादल जैसे बन गया था, और पक्षी भी अगर वहां से जाए तो वो तुरंत उसमें मरकर गिर पड़ता था, पतंती खग मरकर गिर जाता था, ये उसका भयंकर उसका प्रभाव था। और ये वहां पे कहते हैं, यस्य यस्य विषात, जिसके विष से विष विषुष्मता, वो खोलते हुए उर्मी तरंगों से अभिमर्षिता, वो और उसकी हवा से उस विष के कुछ बूंदों को लेकर वो हवा जब फैलती थी तो वो क्या होता था, पूरे आजू बाजू के जो भी वातावरण है, ये जो वृक्ष है, जो लताएं हैं, जो पेड़ है, वो सब कुछ जलकर राख हो गया था, सारा जलकर राख हो गया था, वो कीड़े मकोड़े भी वहां पे मर गए थे। और हरिवंश पुराण में तो यहां तक आया है कि वो कितना बड़ा था, योजन इतना बड़ा था, और उसके आसपास बहुत सारे बिल बने हुए थे, और उसमें बहुत सारे सर्प रह रहे थे, और कहते हैं कि इवन देवताओं को भी उसको पार करना कठिन था, देवता भी उसके ऊपर से नहीं जा सकते थे, ऐसा वो रुद्र, ऐसा वो भयंकर ये था, कुंड था, और ऐसे कुंड में भगवान प्रविष्ट हो गए, तो उसका संयम करने के लिए, उसको मारने के लिए भगवान ने निश्चय किया। और फिर भगवान वहां पे एक वृक्ष था कदंब का, उस वृक्ष के एक बहुत ही ऊंची टहनी पर भगवान चढ़ गए, और वहां पे चढ़ने के बाद उन्होंने अपने घुंघराले बालों को बांध लिया, और यहां पे शब्द आता है कि उन्होंने अपने फेटे को कस के बांध दिया और अपने कमर के कपड़े को भी बांध दिया, और इस तरह से अपनी भुजाओं को ठोक के, जैसे कुश्ती में होता है ना पहलवान उसको ठोकते हैं, तो भगवान अभी भगवान पूरी तरह से तैयार होकर उसमें जंप लेने के लिए उसे मुष्टि प्रहार करके अपनी भुजाओं को ठोकते हुए भगवान ने उस काल्या के हृदय में जंप किया, और ऐसा किया कि कहते हैं सौ धनुष ऊपर उस नदी का, उस जल, उस वृद्ध का पानी ऊपर उड़ा। तो 100 धनुष का अर्थ होता है 500 मीटर, इतना ऊपर वो पानी उड़ गया, और एक ऐसा भयानक हेवी गज जैसे कूदा, ऐसे भगवान उसके अंदर कूद गए, और जैसे कूद गए तो कूदते ही भगवान वहां पे तैरने लगे, बहुत सुंदर से तैरने लगे, और अपने हाथों को मारने लगे उस पानी में। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये जो था ये म्यूजिकल था, क्या था, इट वॉज लाइक प्रोड्यूसिंग म्यूजिक, तो भगवान म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे थे इतना अच्छा, लेकिन काले के लिए ये बहुत भयानक था। तो इस तरह से, तो श्लोक के माध्यम से जाएंगे तो पूरा यहाँ पे हो जाएगा, तो डायरेक्ट अभी मैं कथा बोल लेता हूँ। प्रभु जी हो गया। तो फिर कहाँ पे दे, हाँ, तो बहुत सुंदर आवाज आ रहा था, और तो वहां पे वर्णन आता है, एक गुजराती संत है नरसिंह मेहता, वो एक बोलते हैं, एक प्रभु जी का सुना मैंने कि वो बोल रहे थे कि वो जो गिर गए तो उस नागपत्नी आती है और वो सुंदर बालक को देखती है और बहुत ही आश्चर्यचकित होकर बोलते हैं, अरे गलती से गिर गया लगता है बालक। बोलते कितना क्यूट है, कितना सुंदर है, कितना स्वीट है, ओ माय गॉड। बोलते क्या हो गया, खेलते खेलते गिर गए क्या? और भगवान वहां पे खड़े हैं, बोलते नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं जानबूझ के गिरा हूं। तो बोलते अरे इसको बोलना भी बहुत स्वीट है। बोलते अरे यहाँ पे बहुत भयानक सांप रहता है, वो हमारा पति है, जाओ जाओ जल्दी जाओ यहां से भागो। बेटा तुम कितने सुंदर हो, जाओ जाओ वो मारेगा आपको, वो मारेगा तो हमको बच्चे को मारने का पाप लग जाएगा, जाओ। बोलते मैं जाने के लिए नहीं आया हूं, यहाँ पे ही रहने का प्लान है। बोले अरे तुम पागल हो, छोटे बच्चे हो, समझता नहीं आपको, जाओ तुमको कुछ खिलौना चाहिए, ठीक है हम लाके देते। वो गई कुछ तो हीरे मोती जवाहरात लाके, बोली ये लो अभी जाओ। बोल रहे नहीं नहीं नहीं, इसके लिए नहीं आया, मेरा बाप राजा है, इसकी कुछ कमी नहीं हमारे पास, भी किस लिए आए हो? वो बोल रहे मैं बच्चों के साथ खेल रहा था, गैम्बलिंग खेल रहा था। तो फिर बोले मैंने वहां पे दाव पे लगा दिया था, तुम्हारे पति का सर लाके दूंगा करके। वो उधर हार गया, मैं उधर हार गया तो सर लेने के लिए आया हूं, मैं सर चाहिए मुझे। वो बोले दे, इसका एटीट्यूड तो देखो, ऊपर से नीचे। वो बोल रहे भगवान बोल रहे मैं उसका सर लेने के लिए आया हूं। बोला इतना छोटा बालक है तू। पता है क्या कालिया कौन है, देवता भी डरते हैं उससे। बोलते ज्यादा टाइम पास मत करो, उसको उठाओ, मैं आया हूं, कहो जाओ। तो बोलते अरे बेटा क्यों मरना चाहते हो, तुम कितने मासूम हो, लगता है तुम्हारी माँ ने बहुत बच्चों को जन्म दिया है और उसको पता नहीं कौन सा बच्चा किधर गया, और तुम भटकते भटकते इधर आए हो और यमुना में गिर गए हो गलती से, इसलिए उनको उसको पता भी नहीं। तो बोलते नहीं नहीं मेरे माँ के 2 ही बच्चे हैं, एक मैं और एक बलराम, 2 ही बच्चे हैं, और मैं विशेष करके यहाँ पे आया हूँ। चलो ज्यादा टाइम पास मत करो, उसको उठाओ उठाओ उसको। तो उनको गुस्सा आ गया, बोले अरे बहुत ही कड़क है ये दो। तो वो कहती है डिग है तो वो पैर पट कर जाती है और उसकी मूछी मरोड़ती है किसी काले की, बोलते उठो, वो सोया हुआ था, वो देखो कौन बच्चा है, तो काले उठ गया, कौन है उठ गया। और तो ये बहुत कविता है ये, मतलब महाराज भी बोलते हैं थोड़ा सा उसका पार्ट बोलते हैं, तो इस तरह से तो बहुत सुंदर मधुर भाव है, हालांकि वेदों में नहीं है, भागवतों में नहीं, लेकिन एक भाव के रूप में प्रकट किया है। तो इस तरह से वो कालिया उनके सामने आ जाता है वो आवाज सुनकर, और जैसे कालिया आता है तो बहुत सुंदर रूप भगवान का देखता है, बहुत सुंदर सुंदर शब्द आए श्लोकों में, अगर श्लोक बाय श्लोक जाएंगे तो बहुत सुंदर सुंदर शब्द आए, मतलब प्रेक्षणीय ऐसे शब्द आया, वो प्रेक्षणीय मतलब देखने लायक रूप था, वो क्या सुंदर था, पीतांबर था, सुंदर उनके होठ थे, घुंघराले बाल थे, क्या सुंदर उनके आभा थी, उनके आंख कमल के समान थे, और ये सुंदर रूप देखकर भी कालिया प्रसन्न नहीं हुआ, क्रोध था उसके अंदर, है क्या नहीं। और साधक लोग भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं और इनके सामने भगवान है फिर भी एप्रिशिएट नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि क्रोध ईर्ष्या द्वेष के कारण वो भगवान के रूप को एप्रिशिएट नहीं कर पाया। और इस तरह से उस कालिया ने भगवान की छाती के ऊपर दंश किया, सर्प था तो काटेगा ही ना, तो काटा भगवान को, तो भगवान कुछ नहीं बोले, तो भगवान शांत रहे, और तब उसने भगवान को अपने कुंडली में जकड़ लिया, और फिर भगवान वहां पे, अभी मैं फंस जाऊंगा, जकड़ लिया और भगवान वहां पे लेटे रहे, एक मुहूर्त तक लेटे रहे, यहां पे गौओं ने देखा, ग्वालों ने देखा, और इस परिस्थिति को देखकर वो तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, अचेतन हो गए, और भगवान लेट रहे, तो भगवान अभी क्यों नहीं मार रहे उसको, बोले ऑडियंस कहाँ है, ऑडियंस ऑडियंस चाहिए ना, मैं करूंगा सब, लेकिन बोले अभी आराम करता हूं थोड़ा, ऑडियंस को आने दो। तो वहां पे क्या हो रहा था, तो वहां पे आकाश में, पृथ्वी में और लोगों के अंगों में अपशकुन प्रकट हो रहे थे, आकाश से उलकाया, धरती पे भूकंप, और लोगों के दाएं अंग फड़क रहे थे, जब उनको पता चला नंद बाबा, यशोदा, गोप गोप, ये सारे बच्चे, स्त्रियां, ग्वाल बाल, सब सब निकल गए बाहर, किसको, भगवान को ढूंढे, कैसे ढूंढे, भगवान के चरण चिन्ह देखकर। वो बूझे क्यों नहीं, बोले धरती उनको संभाल के रखती थी, गैया और गोप बालक उसको कभी टच नहीं करते थे, उसको ढूंढते 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 यमुना पे पहुंच गए, जैसे पहुंचा देखा तो भगवान असहाय, अचेष्ट, अचेष्टा, कोई चेष्टा नहीं, पड़े हुए ऐसे, उनके चेहरे को देखकर सब लोग घायल हो गए, कुछ लोग अचेतन हो गए, अरे यशोदा, यशोदा तो वो मरी गई, मृत जैसी हो गई, वो दौड़ी पहले उसमें प्रवेश करने के लिए, लेकिन गोपी ने उसको पकड़ा, तो उस समय वो केवल अपनी आंखों से उनका चेहरा देखते हुए मर गई, मतलब मर जैसी हो गई। तब उन गोपियों ने उनके कानों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, उनकी होश में लाने के लिए, नंद बाबा भाग रहे थे सब, तो सब आ गए थे, फिर भी भगवान पड़े रहे, बोले हीरोइन नहीं आई अब तक, राधा रानी। बोले एक्चुअल जो हमें करना है गोपियों के साथ डांस फ्यूचर में, उसके अभी ट्रेलर दिखाना है, तो वो हीरोइन नहीं आई थी, तो हीरोइन भी आ गई राधा रानी। तो जैसे आ गए तब भगवान बोले हाँ सब आ गए अभी, लेकिन भगवान ने देखा कि सब लोग मर रहे हैं, अभी वो मरने वाले है, तब भगवान को दया आ गई और भगवान ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया। कालियों को लग रहा था अभी मैं जीत गया, है ना, ये भगवान का स्टाइल है, पहले बोलते जीतने देते जीतने देते जीतने देते, और एंड में ऐसा डाव लगाते है ना, फिनिश है क्या नहीं, प्रहलाद महाराज को मारने दिया, ये कर 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 कर, एंड में आ गए और सिर्फ नाखून से मार दे, तो भगवान का स्टाइल एंड में आते तो भगवान ने उसको जीतने दिया, वो भी खुश हो रहा था मैंने पकड़ के रखा है, तो भगवान अपना विस्तार करने लगे, तो जैसे भगवान विस्तार करने लगे वो भी अपनी पकड़ को कसने लगा, कौन, कालिया, तो भगवान और विस्तार करने लगे, वो भी और जोर से बोले ये क्या हो रहा है, अभी अभी तो शांत पड़ा था, ये क्यों अभी ऐसा हो रहा है, तो वो और कसने लगा, फिर भगवान और बढ़ने लगे, आराम से, और वो और पकड़ रहा है, वो और बढ़ गए और पकड़ रहा है। बाद में इतना हो गया, क्षीण हो गया, उसकी शक्ति क्षीण हो गई, और बाद में वो छोड़ना ही पड़ा उसको, छोड़ दिया उसने। जैसे छोड़ दिया भगवान छूट गए, और सब ग्वाल बाल और सब खुश हो गए, बोले हरि बोल जय हो, भगवान छूट गया। कालियों को और गुस्सा आ गया, फिर वो देख रहा था ये है कौन। थोड़ी देर के लिए वो शांत देख रहा था उनको, भगवान को कैसे छूट गया है। उसके आंखें अंगार के जैसे, अग्नि के जैसे लाल लाल थे, उसके नाक ऐसा लग रहा था दो पात्र में विष खोल रहा है, उसके मुख से अग्नि निकल रहा था, और भगवान को क्रूर दृष्टि से देख रहा था, और बस उसके मन में था इसको ऐसा डसना है अभी, क्योंकि वो सावध हो गया था, वो समझ गए थे ये कोई साधारण नहीं है, छूट गए। और तब उसने भगवान को दंश करने का प्रयास किया, तो जैसे उसने पूरी शक्ति लगाकर उसको उनको डसने का प्रयास किया, पूरी शक्ति लगाकर, भगवान थोड़ा सा साइड में हो गए बस, और उसका पूरा निशाना चुक गया। मतलब वो क्रोध में उसको समझ में नहीं आ रहा था, भगवान उसको खाली ऐसे बोलते ना, बहुत जोर से अगर कोई बॉल मारे तो जो उसको खाली दिशा देने की जरूरत होती है, फोर लग जाता है। मैं खेला नहीं हूं लेकिन ऐसा बोलते मैं खेला ऐसा बोलते हैं कि दिशा देने की जरूरत है। तो वो इतना जोर से आता था, भगवान थोड़ा साइड में हो जाते थे, और महाराज कहते कि एक बाल का अंतर रह जाता था, एक बाल का थोड़ा सा रह गया, बस आप भी मर गया। तो तब भगवान इतना उसको उसको फिर चिढ़ाते, भगवान इधर काट, हा हा। तो फिर वो आता था, फिर वो इधर साइड में बोलते इधर काट, अभी बोलते इधर काट इधर उसको चिढ़ा, मतलब वो ऑलरेडी गुस्से में है, और भगवान उसको और चिढ़ा रहे थे, इधर काट के देखे, इधर काट, इधर आ जा, इधर इधर। वो आता था गुस्से से, वो मूर्ख स्टूपिड, उसको समझ में नहीं आ रहा है साइड में हो रहा है। और फिर भगवान उसके आजू बाजू में घूमने लगे, तो वो इतना घूमने लगे, वो भी बहुत सुंदर श्लोकों के शब्द आते हैं ना, एक एक श्लोक को लेंगे ना तो पूरा रसी रस बाहर निकलेगा। तो वो ऐसे घूमने लगे उसके बाजू में, ब्रह्ममानम है ना, घूमने लगे। तो वो भी अवसर देख के वो भी घूमने लगा, तो ऐसा घुमाया। बाद में बोला बस बस टाइम प्लीज वो चक्कर आ गया उसको, वो बोला टाइम प्लीज कृष्ण इतना घुमाया पूरा डीसी, क्या बोलते हैं उसको, जब महाराज बोलते चक्कर आ गया उसको, तो थोड़ी देर के लिए वो चक्कर में घूम गया ऐसा, बूंग बूंग उसको सब घूम रहा था, लेग भी घूम रहा था उसको। तो इस तरह से भगवान ने बहुत घुमाया उसको। फिर बाद में गर्ग संहिता में आता है कि भगवान ने उसको उठा के वो आकाश में फेंका, और फिर वो इसके नीचे पटका, उसको पकड़ के पटक पटक के बहुत पटकाया उसको। तो अभी आप बोलेंगे ऐसे कैसे, तो इसलिए बोलते हैं कृष्ण लीला सुनना है तो ब्रेन को बंद करो, हार्ट को खोलो। बोल रहे थे वो कंस ने, एक लड़के ने पूछा था कि कंस ने देवकी और वसुदेव को अलग अलग क्यों नहीं रखा, गौरंग प्रभा दे अलग अलग रखता तो बच्चे ही नहीं होते, तो इतना टेंशन नहीं होता। तो गौरंग प्रभा बोलते उस समय IIT नहीं था ना। वो जो बोले तुम्हारे जैसे वो कॉलेज में नहीं गया, तो बोला तो हम ब्रेन से आता है श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्रहण, भगवान के लिए लोगों बस हृदय से सुनो, प्रेम से सुनो, ऐसे होता है। बहुत घुमाया, बहुत पटकाया उसको। बाद में भगवान ने बोला अभी डांस का समय हो गया, मेरा भी समय हो गया। तो भगवान ने डांस किया और नागपत्नियों ने प्रार्थना किया, और भगवान ने उसको हकाल दिया, जाओ बोले उधर हो न उधर किधर समुद्र में जाओ, खाली करो इसको। बोले वो गुरुड़ जी टेंशन मत लो, मेरे चरण चिन्ह है, तो वो आपके उसको चरण चिन्ह को देख के आपको प्रणाम करेगा, हरि बोल प्रभु वाले बोलेगा। नागपत्नी ने देखा वो पूरे तरह से घायल हो गया है, तो पहले तो बोल रही थी मारो इसको, मरने दो इसको, लेकिन बाद में देखा ये दीक्षा लेने के लिए तैयार है। तो तू भगवान बोली बस भगवान भगवान ओटी ओटी बन गया, ड्यूटी बन गया अभी बस बस भगवान अभी वो वैष्णव अपराध हो जाएंगे बस अभी बोलो श्री कृष्ण भगवान की ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की कालिया मर्दन लीला की निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। Thank you.